हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अभिमान आशिका से मिलने के लिए उसके घर पर आया था, जहाँ उसकी मुलाकात सलीना से हुई थी। सलीना भी वहीं पर रहने के लिए आई थी। अभिमान जानता था कि आशिका सलीना से बच रही है, बस यही सोचकर उसने आशिका को सतर्क किया था। वो नहीं जानता था कि सलीना के वहाँ होने की बात सुनकर आशिका वहाँ से तुरंत जाने लगेगी। आशिका अपनी पैकिंग कर रही थी और उसने इरिटेट होकर अभिमान को ये भी बता दिया था कि वो अपनी फैमिली से क्यों छुप रही है। अगर आशिका उनके सामने आती तो वो अपना लोन चुकाने के चक्कर में उसे बेच देते। ये जानने के बाद अभिमान उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता था। अभिमान को कुछ भी करके आशिका को रोकना भी था और साथ ही उसे उनसे सुरक्षित भी रखना था। अभिमान ने आशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। आशिका उसकी इस हरकत से हैरान थी। ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर राजवंश, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आप फिर से जबरदस्ती करने पर आ गए। मुझे लगा था कि वजह जानने के बाद आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी बस आपको खुद का फायदा नजर आ रहा है, आशिका ने कसम साते हुए कहा। वो अभिमान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अभिमान ने उसका हाथ काफी कसकर पकड़ रखा था और वो आशिका को जबरदस्ती अपने पीछे खींच रहा था। आशिका उसे मतलब ही समझ रही थी। ये सुनकर अभिमान रुका और आशिका की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोला, खुद का फायदा नहीं सोच रहा हूँ, चाहो तो मेरा काम भी मत करना, मैं बस तुम्हें यहाँ से सेफली निकालना चाहता हूँ। डोंट वरी, तुम्हारे रहने का इंतजाम अब मैं करूँगा और ऐसी जगह करूँगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं, आशिका ने हैरानी से पूछा। पता नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि किसी के साथ जबरदस्ती रहना बुरा होता है, खासकर जब कोई दूसरा आपको इसके लिए मजबूर करे। मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि कोई और ऐसी सिचुएशन को फेस ना करे, खासकर तुम। अब मेरे साथ बहस करने के बजाय कोऑपरेट करो और यकीन रखो मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगा, अभिमान ने जवाब दिया। अभिमान खुद नहीं जानता था कि आशिका के इतने ठंडे बर्ताव के बावजूद वो उसकी तरफ क्यों खिंचा चला जाता था। उसे उसके साथ एक अपनापन महसूस होता था। आज तक उसने निशा के अलावा किसी को इस हद तक प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा था। वहीं अभिमान की बातों से आशिका भी कन्विंस हो गई थी। अब वो आराम से अभिमान के साथ अपना सामान लेकर चल रही थी। आशिका ने कभी नहीं सोचा था कि कोई बिना किसी फायदे के उसकी मदद करेगा। उसने मन ही मन कहा, तुम इतने भी बुरे नहीं हो अभिमान राजवंश, एक अनजान लड़की की मदद कर रहे हो और अपनों को बर्बाद करना चाहते हो, तो कुछ तो हुआ होगा। रचित ने आधा अधूरा बताया था, लेकिन मुझे पूरा सच सुनना है, वो भी तुम्हारे मुँह से। आशिका के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो कि न जाने कितने अरसे बाद आई थी। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति से मिलने के बाद आशी सिंघानिया मेंशन पहुंची। रात ज्यादा हो जाने की वजह से उसने ड्रेस चेंज नहीं किया था, वैसे भी इस टाइम तक सब लोग सो जाते थे। तृप्ति को इतने साल बाद अचानक सामने देखना और उससे ये पता चलना कि उसने सिंघानिया फैमिली की असली बेटी को अब तक जिंदा रखा है, इन सब की वजह से आशी बुरी तरह बौखला गई थी और उसे कुछ भी होश नहीं था। और चलते हुए हड़बड़ाहट में वो यज्ञ से जा टकराई। आई एम रियली सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, आशी ने जल्दबाजी में जवाब दिया और बिना ठीक से देखे कि वो किससे टकराई है अंदर जाने लगी। आशी ने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि पीछे से यज्ञ ने तेज आवाज में कहा, अब तो सच में दाल में कुछ काला लग रहा है, तुमने मुझे सॉरी कहा। यूजुअली इस तरह हम पहले भी टकराए हैं, लेकिन तुमने हमेशा मेरी ही गलती निकाली है। आशी ने अपनी आंखें कसकर बंद की। वो यज्ञ की तरफ पलटी और गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, अब तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकती, काली बिल्ली ने रास्ता जो काट दिया। तुम्हारे बिहेवियर ने मेरे शक को और भी गहरा कर दिया है, यज्ञ ने बिना किसी भाव के कहा। कैसा शक, आशी ने तुरंत पूछा। यही कि तुम कुछ गड़बड़ करके आ रही हो, हमेशा तो तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हो। जहाँ तक मुझे याद है, आज तुम लोग राजवंश मेंशन में डिनर के लिए गए थे, तब तुमने दूसरा ड्रेस पहना हुआ था। ऊपर से दुपट्टा लेकर चेहरे को छुपाना, जरूर कुछ प्लानिंग कर रही हो ना। मेरे मॉम डैड तुम्हारी बातों के जाल में आ सकते हैं, मैं नहीं। उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके तुमने अपनी बात मनवा ही ली, आगे क्या प्लानिंग कर रही हो, यज्ञ ने सीधे सीधे पूछा। उसे किसी से कुछ छुपाने या डरने की जरूरत नहीं थी। आशी, जो यज्ञ के अचानक सामने आ जाने पर पहले घबरा गई थी, वो अचानक बेफिक्र होकर हंसने लगी थी। यज्ञ की बातें साफ जाहिर कर रही थी कि वो बस उसे फंसाने के लिए हवा में तीर चला रहा था। आशी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसे सिंघानिया फैमिली में गोद देने के लिए तैयार किया गया था। कुछ चीजें उसे पहले सिखाई गई थी, तो कुछ उनके साथ में रहते हुए उसने उनके बारे में जाना और जरूरत पड़ने पर हर एक इमोशन का फायदा उठाया था। आशी ने हंसकर सिर हिलाया और कहा, लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है, जो बेवजह के शोज और नॉवेल्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कौन सी प्लानिंग करके आऊंगी? रही बात इन कपड़ों की, तो तुम मॉम डैड से पूछ सकते हो। डिनर के बाद मैं मानसी के घर गई थी और मानसी की मॉम हम दोनों को लेकर किसी मंदिर में गई थी। तुम बहुत स्मार्ट हो, जो पहले से ही सारे बहाने सोच कर रखती हो। वैसे आधी रात को कौन सा मंदिर खुला रहता है, मुझे भी बताओ, मैं भी हूँ आता हूँ, यज्ञ ने जवाब दिया। आशी के ये बहाने आशुतोष और काजल के सामने ही काम आ सकते थे, यज्ञ के सामने नहीं। आशी जानती थी कि वो यज्ञ से जितना बात करेगी, वो उतना ही बातों को कुरेदेगा। अगली बार बताऊंगी, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, आशी ने उबासी ली और वहां से अंदर चली गई। यज्ञ वहां खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आशी से नफरत बेवजह नहीं थी। अचानक यज्ञ के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं, जब वो अनाथ आश्रम में आशिका के मरने के कुछ महीने बाद बच्चा गोद लेने के लिए गए थे। आशुतोष और काजल अंदर कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे, तब यज्ञ बाहर घूम रहा था। आशिका के जाने के बाद उसे किसी के साथ खेलना घूमना पसंद नहीं था। वो बगीचे में अकेले झूले के ऊपर बैठा हुआ था, तभी उसने दूर से आवाज़ आती हुई सुनी। ये कुछ लड़कियों के रोने की आवाज़ थी। यज्ञ जल्दी से दौड़कर उस तरफ गया तो उसने देखा दो लड़कियां, जो आशिका की उम्र की ही थीं, वो दोनों कमरे में बंद थीं और उनके सामने आशी खड़ी हुई थी। उस अनाथ आश्रम में वो तीन लड़कियां ही एक उम्र की थीं। आशी ने अपने हाथ में चाकू ले रखा था और वो दोनों लड़कियां जमीन पर गिरी हुई थीं। वो उनकी तरफ चाकू दिखाते हुए बोली, अगले दो घंटे तक तुम दोनों इस कमरे में बंद रहोगी। आज मुझे ही उस बिग फैमिली में जाना है। अगर गलती से भी मैंने तुम्हें बाहर देख लिया तो इसी चाकू से तुम दोनों का चेहरा बिगाड़ दूंगी और फिर तुम्हें कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, सब तुम्हें हेट करेंगे। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर उन्होंने तुम्हें भी अडॉप्ट नहीं किया फिर क्या होगा? तुम हर बार डराकर हमें ऐसे ही कमरे के अंदर बंद रहने को कहती हो, जबकि अच्छे से पता है कि वो लोग हमेशा छोटे बेबी को लेकर जाते हैं, एक लड़की ने हिम्मत करके कहा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी माँ ने कहा है कि मैं ही इस बिग फैमिली में जाऊंगी, क्योंकि इन्हें बड़ा बच्चा चाहिए, बोला ना, बाहर मत आना, आशी ने गुस्से में कहा और उन्हें कमरे में बंद करके चली गई थी।
उसके बंद करते ही दूसरी लड़की रोने लगी। पहली लड़की ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, इसे यहाँ से कोई नहीं लेकर जाएगा और इस बार मैं इसकी शिकायत बड़े भैया से लगाऊंगी, वहीं इसकी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। और अगर सच में ये किसी अच्छी फैमिली में चली गई तो? दूसरी लड़की ने मासूमियत से पूछा। तो अच्छा होगा ना, इस चुड़ैल से पीछा छूट जाएगा। समझ नहीं आता, जब इसकी माँ जिंदा है तो फिर इसे यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है? पहली लड़की गुस्से में बोली। अडॉप्शन के लिए सिलेक्ट किए गए बच्चों में सिर्फ विहा ही थी जो आशिका की उम्र की थी। यज्ञ ने उन दोनों लड़कियों को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। वो यही चाहता था कि किसी और को अडॉप्ट किया जाए, पर विहा की उम्र आशिका की उम्र जितनी होने की वजह से उसे ही घर ले जाया गया। तब यज्ञ बच्चा था तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन बड़े होने के बाद उसने पता लगाने की कोशिश की थी। विवाह के रिकॉर्ड से सब कुछ हटा दिया गया था, तो आज तक उसे उसकी माँ के बारे में पता नहीं चला था। इतने सालों में मैंने कभी इसे इस तरह छुपकर कहीं आते जाते नहीं देखा। कहीं इसकी माँ तो वापस नहीं आ गई है? मुझे इस पर नजर रखनी होगी। ये लड़की बचपन से ही इतनी चालाक है और बड़े होने के बाद जिस तरह से मॉम डैड के इमोशंस का फायदा उठाकर अपनी हर जिद को पूरा करवाती है, उसके बाद एक बात तो साफ है, इसके दिल में उनके लिए कोई प्यार नहीं है, यज्ञ मन ही मन बोला। यज्ञ ने आशी का सच पता लगाने का सोच लिया था। यही वजह थी कि आज तक उसने आशी को आशिका की जगह नहीं दी थी और वो उसे ज्यादातर विहा ही कहकर बुलाता था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इशिका को नींद का इंजेक्शन देने की वजह से वो सोई हुई थी। ऐसे में अभिमन्यु को मौका मिल गया था कि वो इशिका के पास रहकर उसकी देखभाल कर सके। अभिमन्यु इशिका के पास में बैठा हुआ था और उसके साथ राधिका भी थी। राधिका ने अभिमन्यु को आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो, इसे सब जल्दी याद आ जाएगा और हम सब इसके साथ हैं। अच्छी बात है ना कि अब इसके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो इसका फायदा उठा सके। वो सब तो ठीक है और मुझे पता है कि आप सब मिलकर इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, लेकिन मुझे एक बात की टेंशन हो रही है। इशिका प्रेग्नेंट है, आज नहीं तो कल इसके सामने सच आ ही जाएगा। समझ नहीं आ रहा तब कैसे हैंडल करेंगे? अभिमन्यु ने जवाब दिया। पहले इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभिमन्यु के बताने पर राधिका भी थोड़ा परेशान हो गई थी। अभिमन्यु का सोचना सही था, बाकी सब चीजें वो हैंडल कर सकते थे, लेकिन इशिका की याददाश्त जाने के साथ प्रेगनेंसी हैंडल करना मुश्किल था। ऊपर से इसे पुरानी बातें याद हैं। क्या आप इसे अपने साथ सिंघानिया मेंशन में रहने के लिए कन्विंस कर पाएंगी? इशिका के हिसाब से वो आदर्श का घर है। मालविका ने उसे ये भी समझाया था कि आपके सामने नहीं आना है, क्योंकि उसे देखकर आपका मूड खराब हो जाता था। सोचने में सब कुछ कितना भी आसान क्यों न लगे मिसेस सिंघानिया, लेकिन हैंडल करना मुश्किल होगा, अभिमन्यु परेशान लहजे में बोला। वो इशिका के पास बैठे हुए यही सोच रहा था कि आगे आने वाली चीजों को कैसे हैंडल किया जाएगा। सच में ये उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देने वाला था, क्योंकि इशिका को जब होश आया तो वो नक्श को अपना दोस्त समझते हुए उसके साथ में नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। राधिका और अभिमन्यु इन सब के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। वो किसी भी तरह से नक्श की हेल्प नहीं लेना चाहते थे। हॉस्पिटल में रहने तक तो सब कुछ ठीक था, पर डिस्चार्ज के बाद सच में उनके लिए इशिका की याददाश्त जाने के साथ उसकी प्रेगनेंसी को छुपाना मुश्किल होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अभिमान आशिका को लेकर लिफ्ट से नीचे उतरा था। रात हो जाने के बाद उन्हें लगा कि कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। हालांकि अभिमान अपनी तरफ से काफी केयरफुल उसे लेकर जा रहा था। जैसे ही वो मेन गेट से पहले पहुंचे, ठीक उसी समय तृप्ति टैक्सी से बाहर निकली थी, जो इस वक्त आशी से मिलकर वापस आ रही थी।